जब साधक योग निष्ठ होता है, योग की ओर मुड़ता है, तो वो इस भाव से मुड़ता है कि हम भगवान को या अपने आत्म तत्व को जानेंगे, मिलेंगे। बहुत जॉय होता है उसमें, एक अपना एक जॉय ऑफ एस्पिरेशन, किसी नई डिस्कवरी के लिए जैसे हम निकलते हैं। किंतु सबसे पहली चीज वो जो डिस्कवर करता है वो ये कि उसके अंदर इतना केओस है कि वो आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे कोई घर के अंदर बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हों तो उसमें से रास्ता कैसे निकालेंगे। साधारण जीवन में हमें दूसरों की जीवन में केओस दिखता है, दूसरों के अंदर दुर्गुण दिखते हैं, पाप वृत्तियां दिखती हैं, और ये एक ऑकल्ट अरेंजमेंट है दुनिया का। माँ कहती हैं वर्ल्ड इज ए मिरर, जो हम दूसरों में देख रहे हैं वो हम अपने अंदर कैरी करते हैं, हमारी ही छवि दिख रही है। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है जब हम देखते हैं कि वो सब जो हम दूसरों में देख रहे थे वो हमारे अंदर भी है। वी आर कैरिंग इट इनसाइड अस। और तब बहुत लोगों को, बहुत बहुत से जो अंतर्मुखी होते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। बहुत तरह के विचार आने लगते हैं। ये भी लगता है कि अरे हम अनफिट हैं, हम वास्तव में योग के लिए हैं कि नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर डिस्कवर करता है। भगवान को बाद में डिस्कवर करता है, पहले जो असुर राक्षस हैं उनको डिस्कवर करता है। और इस सब के पीछे कारण है, वो एक अलग बात है। और कोई भी दोष नहीं है संसार का जो कमोवेश रूप में हर व्यक्ति के अंदर ना हो। ये सुनने से बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर कोई सत्य निष्ठा से देखिए, कोई भी ऐसा दोष नहीं है। उसकी बस डिग्री आपको चेंज होगी, कहीं वो अभिव्यक्त दिखता है और कहीं वो छिपा हुआ है। बस जैसे भगवान कहीं पर दिख रहा है, कहीं छिपा हुआ है, वैसे ही दोष कहीं दिख रहे हैं, कहीं छिपे हुए हैं। इसके बारे में बहुत कुछ कई लोगों ने लिखा है। अब कबीरदास जी ने ऐसे लिखा कि बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा न कोई। इट इज सो ट्रू। इस समस्या को हैंडल कैसे करें वो बात की बात है, लेकिन पहले उसको थोड़ा रिकॉग्नाइज करें। और श्री अरविंद की चार कविताएं हैं मैन के ऊपर, मैन द डिपो ऑफ कॉन्ट्रेरीज, परस्पर विरोधाभास तत्वों से बना है। और ये जो परस्पर विरोधाभास तत्व हैं उसके अंदर, उसको शैडो कहा जाता है। जो जैसे हमारे अंदर एक प्रकाश का भाग है, कोई चीज़ है जो उसको रोकती है। और माँ ये कहती हैं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑकल्ट अरेंजमेंट है, क्योंकि हर किसी के अंदर उसकी एक यूनिक शैडो होती है। सब चीज़ सबके अंदर कमोवेश रूप में, क्योंकि प्रकृति एक है, लेकिन किसी के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा होगी और दूसरे के अंदर कोई और चीज़ ज़्यादा होगी। तो अक्सर आपने देखा होगा कि किसी को, मान लीजिए आपने देखा और कहा अरे देखो कितना लालची है, खाए जा रहा है, खाने पर उसको कंट्रोल नहीं है। आपकी वो समस्या नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है। अपने अंदर देखोगे तो वो दूसरे प्रकार की भूख प्रकट होगी। वो भावनात्मक भूख हो सकती है, वो धन की भूख हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। तो बस ये है कि हम अपने अंदर अपना नहीं देखते, दूसरे का देखते हैं। दूसरा भी हमारे अंदर देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि मुझे खाने का बड़ा लालच है। वो दूसरे के अंदर ये देख रहा है कि देखो इनको बोलने का तौर तरीका दे, इनको क्रोध बड़ा आता है, ये तो बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। और जो क्रोधी स्वभाव का है वो तो ये कह रहा है कि क्रोध आना मेरा नेचुरल है, लेकिन दूसरे के अंदर उसको उसका लालच दिख रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट है वो इसलिए है क्योंकि इस संसार का जो बेस है वो इनकॉन्शियंट से निकला है और वो आसानी से जाने नहीं देता है, ऊपर की ओर उठने नहीं देता है. इसका बड़ा इंटरेस्टिंग वर्णन है सावित्री में. इसी को इग्नोरेंट मदर, डार्क मदर या दिति, और उसको शेरविंद बताते हैं शी लाइक अ मदर, जो इग्नोरेंट मदर है दिति, जो अपने एप्रन स्ट्रिंग से, पल्लू से बच्चे को बांधे रखती है और छोड़ती नहीं है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मेरा बच्चा चला जाएगा तो कहाँ चला, उसको छोड़ना है आज नहीं तो कल, पर बांधे रखती है. तो इग्नोरेंस अपनी पकड़ बनाए रखता है और उससे एक एक कदम सांस फूलने वाला होता है जब व्यक्ति आरोहण करता है. लेकिन वो जैसा कहा कि हर एक के अंदर वो अलग प्रकार से वो डिफिकल्टी होगी. तो अब चूंकि इग्नोरेंस तो पूरा बृहत है, पूरे मतलब कॉस्मिक इग्नोरेंस है, तो ये तो बड़ा कठिन होगा अगर हमको हर किसी को पूरी कॉस्मिक इग्नोरेंस को चीर के जाना पड़े. तो भगवान ने या प्रकृति ने सरल बनाने के लिए कहा, अच्छा तुम्हारे अंदर ये वाली प्रॉब्लम है और किसी और के अंदर दूसरी वाली प्रॉब्लम है, तो आपको वो लिमिटेड एडिशन दे दिया गया प्रॉब्लम का. अब उसको जब तक हम पूरी तरह कॉन्कर नहीं करते हैं तब तक हमारा एक पॉइंट तक जाएंगे, उसके आगे नहीं जा पाएंगे. बहुत इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट है जब डिस्कवर करता है व्यक्ति अपने अंदर. शुरू में बड़ी परेशानी होती है, अरे ये क्या है मेरे अंदर भी. लेकिन वही वो अगर एक बार इसको समझ जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है. क्यों? तब हम दूसरे के अंदर बुराई देखना बंद कर देते हैं. नंबर वन, अगर कोई दूसरे के अंदर बुराई देख रहा है तो इसका अर्थ है उसने सही मायने में साधना प्रारंभ नहीं की है. माता जी कहती हैं जब तुम अपनी कठिनाई पर वर्क करते हो तो क्या चीज डेवलप होती है. माँ कहती यू डेवलप ए सनी टॉलरेंस टू द डिफिकल्टीज ऑफ अदर्स. आपको पता चलता है भैया कह नानक यह खेल कठिन है, ये इतना आसान नहीं है. तो ये इंडिकेशन होता है कि हम उस पर वर्क कर रहे हैं. हम लोगों के केस में बहुत ही अच्छा है कि ये केवल तपस्या पर आधारित नहीं है. केवल एफर्ट पर होता तो लगभग असंभव है, किंतु ग्रेस है और ग्रेस हमको पकड़ के उस पर काम करती है. लेकिन ग्रेस का जो तरीका है कार्य करने का वो बहुत अलग है. हम लोगों को हम वो नहीं कर सकते, वो उपाय या तरीका नहीं ढूंढ सकते क्योंकि हम अपने ही अंदर जूझते रहते हैं. और ग्रेस क्या करती, कभी कभी बाहर से एक घटना सामने ले आएगी और उस घटना को आप तब तक रिजॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपने अपने अंदर उस पॉइंट को नहीं टच करके करेक्ट किया. और ये इस हद तक जाता है, मैंने इसकी स्टडी भी की, अपने अंदर ही की है, कि अगर आपकी बाहर की कोई परिस्थिति है जो बदल नहीं रही है और आप उससे परेशान हो रहे हैं तो आप देखो आपके अंदर वो कौन सी चीजें जो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग है. आप इसको बदलोगे मां की कृपा से, वो ऐसे गायब होती है बाहर की, सब कुछ वही है लेकिन वो चीज गायब हो गई. जैसे एक ताश का पत्ता होता है ना, कोलैप्स करता है, इल्यूजन मैजिक, इसका वर्णन है सावित्री में फॉल्सहुड में जब गिरने के बाद, कि एज इफ ए मैजिक इल्यूजन इज अनडन, कि सच में ऐसा था, उसकी जगह बिल्कुल कोई और चीज आ जाती, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग वाइब्रेशंस अवेकन करते हैं और हमको लगता है हम संसार से छिपा रहे हैं, बड़ी चतुरता से छिपाते हैं, लेकिन हमारी चतुरता चतुराई कहां फेल हो जाती है, भगवान के सामने. तो वो हमको बार बार वही परिस्थिति थोड़ी चेंज होके, वही सिचुएशन थोड़ी बदल के, हमको लग रहा है कि हमारी परिस्थितियां बदल रही हैं लेकिन वास्तव में वो इंडिकेशन है कि तुम नहीं बदल रहे हो. तुम नहीं बदल रहे हो तो परिस्थितियां आपकी बार बार आ रही हैं दिखाने के लिए, देख ये है, देख ये है. तो ये एक कविता है, उसका नाम है मैन द डीपो ऑफ कॉन्ट्रेरीज. कॉन्ट्रेरीज क्या है इसमें तो खैर मैं पेज नहीं बताऊंगा. मैन The depot of contraries. Depot aata hai DESPOT. Par pronunciation uska depot hoga. Despot, agar aap usko literal wo karna chahte hain. Man, the depot of contraries. Ye. I am greater than the greatness of the seas. Ek bhaag hai hamare andar. Jo महसूस करता है कि हम हर चीज से जूझ सकते हैं, हर चीज का सामना कर सकते हैं. ए स्विफ्ट टॉर्नेडो ऑफ गॉड एनर्जी, ए हेल्पलेस फ्लावर दैट क्विवर्स इन द ब्रीज. आई एम वीकर देन द रीड वन ब्रेक्स विद ईज. अब देखिए, ये श्री राम भगवान है, उनके जीवन में ये बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, एक ऑलमोस्ट कंट्रास्ट के रूप में, जिसको समझ नहीं पाती है माता सती. वह श्री राम जो रावण के सम्मुख और उसकी पूरी सेना के सम्मुख एज द मोस्ट करेजियस वैलरियस पर्सन वो खड़े हैं, और बिल्कुल निडर निर्भय होकर, वही श्री राम जब माता सीता का अपहरण होता है जानकी का, तो रोते हुए घूम रहे हैं मन मन में, कहां हो सीते, कहां हो सीते, कहां चली गई हो. तो ये एक कंट्रास्ट जो हम सब अपने अंदर में कैरी करते हैं. एक कोई हिस्सा होता है जहां हम बड़े ही करेजियस होते हैं, निर्भय निडर होते हैं, वहीं एक दूसरा हिस्सा है जहां हम बहुत डर से भरे होते हैं. और माने इसको बहुत विस्तार से बहुत जगह बताया है, कोई कोई व्यक्ति होते हैं जो माइंड में बड़े करेजियस होते हैं लेकिन शरीर के अंदर बहुत डर होता है, कई बार रिवर्स भी होता है. तो ये एक डर, एक उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन कई सारे हिस्से हैं, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जीवन के. तो अपोजिट्स हमारे अंदर मिलते हैं कि एक और वो व्यक्ति समुद्र से भी लोहा ले ले, तूफान की तरह उसके अंदर भगवान की एनर्जी है, वहीं दूसरी ओर वो एक छोटे से फूल की तरह बिखर सकता है, टूट सकता है. अब ये जो एडवर्स फोर्सेस होती हैं वो ये जानती हैं, तो वो क्या करती हैं, आपके वीक स्पॉट पे हैमर करती हैं. एक स्टोरी है इस पर ना, कि पूरी ट्रॉय के वार में एचिलिस की स्टोरी है. एचिलिस एक बड़ा दुर्दांत योद्धा है, कोई उसे जीत नहीं सकता है. उसको दिखाया, पोर्ट्रे किया है कि ही इज ए किलिंग मशीन, मतलब जो आप देखते हो ना कमांडो, वन मैन आर्मी, ये सब पीछे छूट जाएंगे, किलिंग मशीन है. लेकिन उसका एक भाग है हृदय का जो बहुत कोमल है, जिसके चलते वो ये तक कह देता है, वो युद्ध लड़ने आया है, सब इसके भरोसे युद्ध लड़ने के लिए बैठे हैं, सारे जो आए ग्रीक ट्राइब्स इकट्ठे हुए हैं. वो कहता है लेकिन पता है क्या, मुझे प्रेम हो गया है जो ट्रॉय, वो जो प्रायम है उसकी बेटी से, तो मैं तो प्रस्ताव भेज रहा हूं, अगर मेरी उसने वो मान गया है मेरे विवाह के लिए तो मैं उनकी तरफ चला जाऊंगा. अब देखिए उसके अंदर एक ऐसा भाग है जो बहुत ही कमजोर है, बाकी सब चीजें उसके लिए अनइम्पॉर्टेंट हो जाती हैं. ये तो नियति है कि वो नहीं मानते हैं और कई घटनाक्रम होते हैं, वो एक अलग बात है. एचिलिस के ऊपर एक कहावत है और इसको कहते हैं एचिलिस हील, और वो इसी बात को संकेत करती है. तो जब वो जन्म लेता है तो उसकी माँ कहती है कि, माँ उसकी देवी है, तो कहती है कि मैं अपने इस बच्चे को पानी में डुबो दूंगी, इस पानी से निकलेगा तो वज्र जैसा देह हो जाएगा. ये है ना, देखिए दुर्योधन की कहानी, सेम चीज. दुर्योधन की जंगा बड़ी कमजोर रह गई, क्यों, सारी उसकी समस्या वही थी, योद्धा था सब था लेकिन वो कामनाओं से और महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ था. तो एचिलिस को डिप करके जब बाहर निकालती हैं तो सारा शरीर उसका अद्भुत हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है. लेकिन उसका कमजोर पॉइंट क्या है, हील, जहां उसने डुबो करके निकाला है तो पकड़ना पड़ा. तो एचिलिस के बारे में कहा जाता है कि जब वो भागता था तो उसके जैसा कोई नहीं भाग सकता था. आप फिल्म भी देखी होगी ट्रॉय, इतनी तेज भागता था कि मतलब ही इज नोन फॉर हिज रनिंग. लेकिन वही एचलेस उसकी हील उसका वीक स्पॉट है. तो यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो हमारा स्ट्रांग पार्ट होता है वही हमारा वीक स्पॉट भी होता है. जो व्यक्ति बहुत भावनाओं से भरा हुआ भगवान की ओर मुड़ता है, तो देखिए कितनी स्ट्रेंथ है ना उसकी भक्ति. उसी व्यक्ति के अंदर एक भाग होगा भावनाओं के अंदर जो बहुत कोमल और वल्नरेबल होगा, जो पूरी उसकी योग को डिरेल कर सकता है. हम तुलसी और सबके अंदर ये अलग अलग रूप से, तो आप देखिए तुलसीदास जी के जीवन में, पूर्व जीवन में क्या उनकी कहानी होती है. बहुत भक्त थे, मंदिर में पुजारी और बस पूजा अर्चना करना. लेकिन अंतिम 5 वर्षों में उनको जीवन के प्रेम हो गया. एक गणिका थी जो आती जाती थी, बहुत प्रेम हो गया. तो इतना प्रेम हो गया कि वो बस उसी के बारे में सोचते रहते थे, उसी के बारे में सोचते रहते थे. और जब मरते हैं तो बस उसको पुकार रहे हैं कि भाई तुम आ जाओ, तुम मुझे पानी दे दो. लास्ट 5 ईयर्स. तो जब ये लाइफ आती है तो एक लंबे समय तक यही प्रेम उनको रत्नावली से होता है, इसी तरह का प्रेम, पागल जैसा प्रेम. और तब एक दिन ये भगवान की लीला, कि वो सब जानते हैं कि वो रस्सी पकड़ के चले गए, तूफान पर थी नदी और चले गए, मुझे मिलना अपनी वाइफ से. तब SMS वगैरह नहीं होता था, नहीं तो मना कर देती मत आओ. तो लेकिन अब चले गए, ये तो शॉक्ड हो गई रात को, ये कैसे आए हैं. और उन्होंने कह दिया कि इतनी लगन यदि तुमने राम के चरणों में लगाई होती तो कल्याण हो जाता, भगवान मिल गए होते. बस झटका लगा, बदल गए. पर ये देखिए सेम चीज है, वही भावना है जो तूफान की तरह वहां पहुंचा देती हैं और कहां ले जाएंगे ना जाने. वही भावनाएं अगर आपने उनको हार्नेस कर दिया, और ये प्रकृति के भी अंदर है. आप किसी भी ऊर्जा को कैसे करते हैं, हार्नेस करते हैं. वही ऊर्जा जो आपको डुबो सकती है, वही ऊर्जा आपको प्रकाश दे सकती है, जीवन दे सकती है. तो ये एक अपने अंदर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए. जो स्ट्रांग पॉइंट है वही वीक स्पॉट है. जिसका मन बहुत डेवलप्ड है, जो उस चीज को रिसीव कर सकता है भगवान के प्रकाश को, उस मन में ही डाउट का एक पार्ट रहता है जो बीज की तरह उसको लंबे समय तक वो डाउट उसको पीछे पकड़ करके रखेगा. तो ये श्री अरविंद हमारा परिचय हम सबको करा रहे हैं. आई हार्बर ऑल द विजडम ऑफ द वाइज इन माई नेचर ऑफ स्टुपेंडस इग्नोरेंस. सब पता है, पूरी सब किताबें पढ़ ली, स्कॉलरली नॉलेज हो गई, लेक्चर दे दिए, किताबें लिख ली, लेकिन स्टुपेंडस इग्नोरेंस, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, वो वाली सिचुएशन है. और शेरविंद इसका संकेत देते हैं सिंथेसिस ऑफ योग में. किताबें पढ़ना अच्छी बात है, एक प्रिपरेशन होता है माइंड का, लेकिन हमको यह भूल नहीं करनी चाहिए कि अगर हमने इंटेलेक्चुअली सब पढ़ लिया, सब समझ गया, तो हम इटर्नल को जान गए. नहीं. और कई बार चूंकि व्यक्ति बहुत पढ़ लेता है, बहुत जान लेता है, और आसपास बहुत लोग होते हैं कुदाल लेके खड़े हुए जो उसके लिए गड्ढा खोदते रहते हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप बड़े पंडित हैं, आपने ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, तो अगर उसने मान लिया तो गड्ढे तो खुदे हुए हैं, गिरेगा. उसका इंटेलेक्चुअल प्राइड ही उसको ले डूबता है. उसको ये नहीं समझ आता कि मुझे विनम्र कितना होना है. बिना विनम्रता के ज्ञान नहीं आता. और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको बड़ी समस्या होती थी, अभी भी हैं. आप आश्रम में भी जाएंगे तो आपको मिलेंगे ऐसे लोग हैं जो बहुत उन्होंने इंटेलेक्चुअली डेवलप हैं और काफ़ी पढ़ा भी है. श्री अरविंद को एक पकड़ भी है. वो उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं. किन का? जो बड़े सरल हृदय से, जैसे उड़ीसा से लोग आ गए या आपके MP के लोग आ गए, बड़े सरल हृदय से चले गए, तो वो ये तो ऐसे ही हैं, हम हैं. और वो एक पॉइंट पर रुके हुए हैं. वो नहीं देख पा रहे हैं कि वो एक पॉइंट पर रुके हैं. उनके इस इंटेलेक्चुअल प्राइड ने रोक रखा है. क्योंकि वो आपको वही इंटेलेक्ट जो आपके लिए एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है भगवान की सत्य को प्रकट करने। शेरविंद को देखिए क्या इंटेलेक्ट है, मतलब जिसको कहते हैं हद, सभी हदों के पार, लेकिन वो देखिए कितने विनम्र हैं। और फिर वो इंटेलेक्ट जब माध्यम बनता है तो अद्भुत माध्यम बनता है। तो उसी पॉइंट पर जहां हमारी स्ट्रेंथ है वहीं पर हमारी एक कमजोर कड़ी है। बहुत जगहों पर आता है द्रोणाचार्य की कमजोर कड़ी क्या है, द्रोणाचार्य की कमजोर कड़ी उसका बेटा है, उसको ब्रह्मास्त्र दे दिया जो गुरु कभी करना नहीं चाहिए। तो श्री कृष्ण जानते हैं कि इसकी कमजोर कड़ी ये है। कर्ण की स्ट्रेंथ क्या है, दानवीर है। कर्ण की कमजोरी क्या है, दानवीरता है। भीष्म की स्ट्रेंथ क्या है, प्रतिज्ञा। और भीष्म की कमजोरी क्या है, प्रतिज्ञा है। तभी तो कहते हैं कि भाई मैं, मेरी प्रतिज्ञा है मैं किसी नारी पर हाथ नहीं उठा सकता। तो अगर पूर्व जन्म में भी नारी थी तो मैं शस्त्र डाल दूंगा, शिखंडी को ले आओ, मैं नहीं चलाऊंगा। देखिए वही व्यक्ति और श्री कृष्ण को कंट्रास्ट कीजिए, श्री कृष्ण को कंट्रास्ट कीजिए। वो कभी भी धर्म और सत्य वही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। कोई प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा है पर प्रतिज्ञा कभी उससे इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। तो ये हम अपने अंदर देखते हैं कि हम सबके अंदर कोई ना कोई, इसको माता जी ने इस पर बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, कहती हैं हर एक का अपना एक सिबोलिथ होता है, एक कहते हैं ना जो एक गंदी सी जगह जहां आपने चीजों को डाल रखा है, तो हम उसको नहीं देखते हैं। और उसका एक कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन है, माने लिखा है क्लिंग टू ट्रुथ, आपने देखा होगा ना वो लिखा है, जब जाते हैं श्री अरविंद के कक्ष के और जब वापस आते हैं तो भी, दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब दर्शन हो गए भगवान के, क्लिंग टू ट्रुथ हाँ जाते तो माँ से किसी ने आकर के कहा, माँ आपने तो क्लिंग टू ट्रूथ वहां लिखा है लेकिन उस व्यक्ति को देखिए कितना फॉल्सहुड में है, इसको आपने आश्रम में क्यों रखा है। माँ हंसने लगी। माँ कहती है मेरे बच्चे यदि मैं सत्य क्या है दिखा दूं आईना तो कोई भी यहां पर नहीं खड़ा रहेगा। फिर वो कन्वर्सेशन में बताती है, कहती है हर किसी का एक पॉइंट होता है जो वो समझता है वही सच है और वो रिजिडली उसमें अटका हुआ है। अब उसमें एक वो कहानी बताती हैं, सुन लीजिए कि बड़ी मजेदार है। माताजी से वर्ल्ड वेजिटेरियन कांग्रेस वालों ने पूछा कि हमको वर्ल्ड वेजिटेरियन कांग्रेस के लिए मैसेज चाहिए। माँ ने कुछ नहीं कहा। दो महीने बाद शिष्य ने याद दिलाया, माँ चुप रही। तीन महीने बाद फिर माँ वो पूछ रहे हैं, माँ कहती है हाँ अब मैं कुछ दे दूंगी लेकिन उस समय यदि मैं दे दी तो वो सब फ्लैट हो जाते। माँ क्या देने वाली थी, स्टॉप मेकिंग फस। अब बहुत कई बार लोग पूछते हैं आश्रम में, फॉर इंस्टेंस कॉर्नर हाउस में, अब एक्स सर्विस तो हमारे उसमें भी होती, ये नहीं कि माँ कह रही है कि नहीं नहीं आप चिकन खाओ ये खाओ, ये नहीं कह रही है माँ, लेकिन लोग पूछते हैं कि फला फला आप आश्रम में दोनों प्रकार के थे, हमारे प्रणब दा थे वो खाते थे चिकन। तो किसी ने एक बार मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो मैंने कहा आपकी पूर्व धारणाएं तोड़ने के लिए है। तो उन्होंने कहा नहीं इसका मेरे से क्या मतलब। मैंने कहा बिल्कुल मतलब है, आपकी पूर्व धारणा है कि जो ये खा रहा है वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। इज इट ट्रू, अगर आप जाएं अपने इतिहास में, इट्स नॉट ट्रू। अगेन वेजिटेरियनिज्म इज वेरी गुड, माता जी ने इसके बारे में कहा है, लेकिन ये जो पूर्व धारणा होती है हमारी जिसके कारण अभिमान डेवलप होता है कि मैं तो भाई सबसे बेस्ट हूं, क्यों भारतवर्ष में मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं स्मोक नहीं करता, मैं चिकन नहीं खाता, तो मैं तो ऑलरेडी योगी हो गया है ना, ये इस तरह की पूर्व धारणा है। तो वो वीक स्पॉट। फिर माँ कहती हैं कोई है जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली अकेला साधक से आपका वो आता है ना, सफेद कपड़े पहन करके जा रहा है, आजू बाजू कोई नहीं, देखता नहीं, कहीं स्माइल नहीं करता, मुंह झुका के जा रहा है, ऐसे एक आइडिया आता है ना। माँ कहती हैं ऐसा व्यक्ति अगर देखता है किसी का कोई मित्र बन गया है आश्रम में, मित्र मतलब एक पुरुष और स्त्री, तो कहते हैं ये देखो ये गिर गया, ये बर्बाद हो गया। वह कहती उसको कुछ भी नहीं मालूम है कि ये योग क्या है। और इस तरह से वो धीरे धीरे बताती हैं कि ये सारी जो हमारी पूर्व धारणाएं हैं, जो सारे हमारे स्टक पॉइंट्स हैं, जहां वो हमारा वीक स्पॉट है, अगर हम जाएं, कई बार लोगों को ये नहीं समझ आता था कि माँ ने लिपस्टिक क्यों लगाई हुई है, माँ ने अच्छी सी साड़ी क्यों पहनी है। इसीलिए लोगों को समस्या होती है कि माँ तो अनंत रूपणी है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड मदर। श्री अरविंद लगते हैं, हमारी जो इमेज है ना योगी की, उसमें फिट होते हैं, बैठे हैं योगी राज, धोती पहनी है ना, सबको लगता है भाई ये तो योगी राज है, देख के ही लगता है। वह माँ जिनको श्री अरविंद स्वयं कह रहे हैं कि मेरी साधना यदि रुकी हुई थी, किसी ने कहा उनकी साधना रुकी हुई, कहते हाँ माँ के आने के पहले एक पॉइंट पर जाकर रुकी हुई थी, माँ के आने के बाद 10 वर्षों का काम 1 वर्षों में हो गया। माँ को देखते हैं और माँ को देख करके श्री अरविंद क्या कहते हैं, शी इज बॉर्न फ्री, इनके जैसा तो समर्पण किसी का नहीं। टेक्निकली उस समय माँ के 2 विवाह हो चुके थे। अब देखिए ये हमारे जो स्पॉट्स होते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, हम स्ट्रगल करते हैं उसके, क्योंकि हमारे अंदर हमने बहुत सारे ऐसे बहुत है ब्लाइंड स्पॉट्स जिसको रखे हुए हैं सजो करके, जिसको हम नहीं छोड़ सकते। और योग इज अल्टीमेट फ्रीडम, तो फ्रीडम वो वाली नहीं, नीचे वाली हायर फ्रीडम। तो माँ से किसी ने पूछा, माँ अब तो हम और कंफ्यूज हो गए, पहले तो ये ठीक था, ये सच है ये झूठ है, तो हम कैसे जाने कि सच क्या है। तो माँ कहती बहुत सिंपल है, वो एक ही जगह जहां माँ धर्म शब्द को प्रयोग करती है, कहती है एक ही शब्द है जो इसको समुचित रूप से एक्सप्लेन करता है, वो है धर्म, इंडियन वर्ड है। कहती यदि तुम्हारे अंदर सत्य को जानने की अभिप्सा है तो तुम्हारे हृदय में वो प्रकट होगा, उसको डिफाइन मत करो, उसको तुम डिफाइन करोगे तो खो दोगे। अब देखिए कैसे वही व्यक्ति जो इंटेलेक्चुअल किताबें लिख रहा है, वो स्कीम बना के दिखा रहा है, यहां ओवर माइंड है, यहां हुआ है कई बार वार्तालाप, वहां सुपर माइंड है, ये ओवर माइंड है, फिर इल्यूमिन माइंड है, इंट्यूटिव माइंड है, इल्यूमिन माइंड, हायर माइंड, नॉर्मल माइंड, करते करते वहां तक। तो उन्हें मुझसे पूछा कि आपका इसके बारे में, मैंने कहे तो आपने सब उल्टा पुल्टा कर दिया, 2 डायमेंशन में कैसे होगा। मैंने कहा सुपर माइंड सर्वत्र है, इनकॉन्शियस में भी छिपा है, तो भगवत गीता कहती है ना, ही सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स, यही चीज सुपरामेंटल के बारे में कहते हैं। आप देखिए आपने 2 डायमेंशन में बड़ी क्लैरिटी के साथ, यही आपकी समस्या हो गई, क्योंकि अब आपको क्या लग रहा है, आप इतना ऊपर चढ़ के जाओगे, हे भगवान हमसे नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपकी अंडरस्टैंडिंग में है, क्योंकि आपको ये गुमान है कि मुझे बहुत अच्छी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने पढ़ लिया है, सारा मैप डायग्राम सब बना लिए हैं। तो ये हम सब के अंदर ये जो परस्पर विरोधात्मक, और माँ कहती हैं जैसे कोई व्यक्ति जो बड़ा लालची है, एक भाग में वो बड़ा जेनरस होता है, ये हम लोगों ने देखी भी होगी भारतवर्ष में, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग होते हैं जो बड़े कंजूस, एक पूरा तबका होता है, इतने कंजूस होंगे कि आप देखेंगे कि वो अपने जीवन में उनके मतलब देख के आपको लगेगा कि नहीं ये सेठ जी ने इतने पैसे हैं, लेकिन वो देख के आपको लगेगा ये तो कोई बाहर निकल जाए सड़क पे, लगते हैं कोई गरीब व्यक्ति निकला हुआ है, लेकिन वो जब एक पर्टिकुलर उसमें जब दान देंगे तो बिल्कुल बिना सोचे हुए दान दे देंगे। वही एक भाग जो बहुत ही आपका लालची है, पर लालची नहीं कहा है उसको श्री अरविंद ने, उन्होंने कहा दे आर वेरी मेटिकुलस अबाउट मनी, इसको एक गुड क्वालिटी बताया कि वो बहुत ही धन को ना, वो ऐसे नहीं कि थ्रो कर दिया, लेकिन वो एक लिमिट के बियॉन्ड चले जाते हैं। पर वही जब कोई ऐसा कार्यक्रम, तो अचानक वो एक भाग है जिसमें बहुत जेनरसली देंगे। आप देखिए यहां ज्यादातर मंदिरों में आप देखेंगे, ऑन ए फ्लेम ऑफ राइटियसनेस आई फिक्स माई आईज वाइल आई वेलो इन स्वीट सिन एंड ज्वाइन हेल्स डांस. इसका उदाहरण तो हम सब लोग जानते हैं, बुरके में जो घूमते हैं, राइटियसनेस, फ्लेम ऑफ राइटियसनेस. और अगर आप अरब वर्ल्ड की हकीकत देखेंगे, केवल हरम की बात नहीं है, इस हद तक जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप हराम है, आप करोगे तो आपको कत्लेआम हो जाएगा. तो क्या करते हैं, पैसे तो बहुत हैं, गाड़ी में जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं यूरोप या कहीं जहां ये अलाउड है. उसके बाद क्या बुरका और क्या सिख की दाढ़ी, स्ट्रीट्स. और ये देखिए जो पत्थर मार के ये सब जो कहानियां हैं, ये इसको इंडिकेट करती है कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई हृदय के अंदर कोई पाप ना किया हो. नॉलनी दायक जी के लिखते हैं कि सब लोग चेस्टिटी की बात करते हैं, चेस्टिटी बहुत पवित्रता, एक सेक्सुअल प्योरिटी या इस तरह एक पत्नी व्रत. कहते हैं अगर मनुष्य के मन के एटमॉस्फेयर को कोई पढ़ ले ना तो कहेगा कोई भी नहीं है चेस्ट. अब देखिए कितनी ये अद्भुत बात है कि वही व्यक्ति जो बड़ा राइटियस है, और वो बाहर बहुत राइटियस होगा, क्यों, क्योंकि वो अपने पाप को छिपाना चाहता है. कैसे, ये दिखा के कि देखो ऐसा किया उसने, ऐसा किया. और यही चीज हम माँ श्री अरविंद के और ऑफ कोर्स अवतारों के जीवन में देखते हैं, गौतम नारी अहिल्या तारी, ये सारी चीजें ये इस ट्रुथ को इंडिकेट करती है कि आप जो बहुत ज्यादा किसी एक चीज को दूसरों में ब्लेम कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, उसको पनिश करने की बात कर रहे हो, आपके अंदर वो बड़ी वृहत मात्रा में छिपी हुई है और आप उससे जूझ रहे हो, नहीं जूझ पा रहे हो तो बाहर में उसको आप. तो यहां पर ऑन ए फ्लेम ऑफ राइटियसनेस आई फिक्स माई आईज वाइल आई वेलो इन स्वीट सिन एंड जॉइन हेल्स डांस. तो अब इसमें एक छोटा सा एक हो कि अगर कोई पूछे कि कौन सा ऐसा झूठ है जो सबसे अधिक बोला जाता है, कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता. सही है ना, अगर कोई ये बोल रहा है ना मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो उसकी बात पर भरोसा मत करना, ये कुछ छिपा रहा है. आपको ये बोलने की क्या जरूरत है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, Whom are you fooling? और वो क्या समझते हैं सच से, उनके दिल में जो आया वो बक दिया वो सच है. पहले तो वो सच है ही नहीं, क्योंकि हमारा दिल तो किसी भी तरंगों को पकड़ करके उसको सच मान लेता है. वी डोंट इवन नो व्हाट इज ट्रूथ. माय माइंड इज ब्रिलियंट लाइक ए फुल ऑर्ब्ड मून, इट्स डार्कनेस इज द केवन ट्रोग्लोटाइट्स. देखिए बड़े ब्रिलियंट माइंड, इंटेलेक्चुअल माइंड. अब ट्रोग्लोडाइट क्या होता है, ये पुराने केव के अंदर रहने वाले जो जीव हैं, तो उनके अंदर एक भाग होता है जो बिल्कुल केव मैन की मेंटेलिटी जैसा होता है, बहुत ब्रिलियंट है. लेकिन जब वो उसको किसको पता होता है, इसीलिए अगर किसी के बारे में आपको सच में जानना है कि वो कैसा है, या आपको खुद के बारे में जानना है कि मैं कैसा हूं, तो किससे पूछना चाहिए. यदि खुद को नहीं समझ आ रहा है तो, खुद को समझ आ जाए तो सबसे अच्छा है, तो अपनी वाइफ से पूछ लीजिए, उसको ठीक पता है कि आप कैसे हो. ये नहीं कभी कभी ज्यादा ही पता होता है जो आपको भी नहीं पता है. लेकिन ये ऑकल्ट अरेंजमेंट देखिए संसार का, कि भगवान ने ये बनाया हुआ है कि कोई तुम्हारे जीवन में होगा, कहते ना आईना दिखाने वाला. तो ट्रोग्लोडाइट वही माइंड जो बहुत ब्रिलियंट है, वो केव मैन की डार्कनेस में रह रहा है, एक भाग है उसका जिसकी मेंटालिटी बिल्कुल केव मैन की तरह है. आई गैदर लॉन्ग टाइम्स वेल्थ एंड स्कॉन्डर सून, आई एम एन एपिटोम ऑफ ऑपोजिट्स. बड़ी कठिनाई से, चाहे वो आंतरिक निधि हो या बाहरी, जमा की और वैसे ही आसानी से उसको लुटा दी. तो पूरी साधना यहां जाके अटकती है. इसी को श्री अरविंद कहते हैं द क्रूशियल टेस्ट ऑफ द साधना. बाकी सब बहुत आसानी से हो जाता है आपको. हार्ट के अंदर भक्ति आ जाती है, माइंड में इल्यूमिनेशन आ जाता है, कर्मनिष्ठ हो जाते हैं माता जी का काम करना. ये जो लोअर वाइटल है ना, केव मैन जो जीवित है, जो अंदर में डायनासोर गुर्राता है और सांप पड़ा हुआ है, वो कब पता चलता है? आप बड़े शांत ध्यान करके उठे, आह अपार शांति महसूस हो रही है, बाहर निकले, किसी ने कहा आपने ये क्या किया, इस तरह से. अब आप देखिए अंदर से वो जाग गया, विषधर एनाकोंडा. आप कह रहे हो ये सारा जो आपने गैदर किया था आपने खो दिया, एक मोमेंट भी नहीं लगा, है ना. ये होता है, इसीलिए माँ बार बार कहती विजिलेंस, सिंसेरिटी, इसको कल्टीवेट करना. नहीं तो माँ तो बहुत देती है, मतलब वो तो इतना देती है कोई व्यक्ति संभाल नहीं सकता है, कोई भी नहीं, योगी तपस्वी नहीं संभाल सकते हैं. पर हम स्क्वांडर करते हैं. एक जगह माँ कहती हैं कि मैं जितना तुम्हें, तुम जब कुछ पुकारते हो तो मैं 3 गुना अधिक शक्ति देती हूँ, एक जो समस्या को इमिजिएटली सॉल्व करे, दूसरा उसके जड़ में जाके उसको ठीक करे, और तीसरा जो है वो रूपांतरण की ओर उस भाग को प्रेरित करे. बट वी जस्ट थ्रो इट ऑफ. ये खेल है जो हम लोगों को इसीलिए समझ नहीं आता जीवन में जो होता है, क्यों होता है, क्योंकि हम बाहर बाहर से देखते हैं. आप देखिए किसी के जीवन में कोई ऐसी घटना हो जाती है जो पीड़ित होता है ना, तो हमको लगता है बाहर से वो कितना अच्छा है, था व्यक्ति या जो भी था, लेकिन हम नहीं जानते उसके अंदर क्या चल रहा था, क्योंकि हम बंद हैं, आंखें हमारी बंद हैं, नहीं खुली हैं. और जब हम उसको जानते हैं तो एक अलग दृश्य नजर आता है, तो लगता है भगवान जैसे जैसे ले जाते हैं उन्हीं को सबसे बेस्ट समझ है. उस समय उसके अंदर क्या चल रहा है, विगत काल में क्या था, आगत काल में क्या होने वाला था, ये सारी चीजों का. इसीलिए कहते हैं कि ट्रस्ट, सरेंडर, एक्सेप्टेंस, अंत में आई विद रिपीटेड लाइफ डेथ स्लीप सरप्राइज आई एम ए ट्रांजियंस ऑफ द इटर्निटीज. तो ऐसे हमारे अंदर बार बार कहते हैं मृत होता है, अब ये उसका अल्टीमेट ले गया, लेकिन मनुष्य के ही अंदर एक अमृतत्व का भाग है, अंश है, इसीलिए वो हर चीज में अमृतत्व ढूंढता है, जानते हुए भी कि मृत्यु है वो उसको नहीं मानता है. ये किम आश्चर्यम का डीपर सेंस है. किम आश्चर्यम जो प्रश्न है युधिष्ठिर का, कि हम हर किसी को मरते हुए देखते हैं लेकिन हम व्यवहार ऐसे करते हैं जैसे हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हमारे अंदर कोई भाग है जिसके अंदर इंट्यूशन है इमॉर्टैलिटी के. तो ये दोनों विरोधाभास, और जो इसको माँ की कृपा से पहले तो सिंसियर होना पड़ता है, ऑनेस्ट की एक्नॉलेज करना पड़ता है कि हमारे अंदर ये भाग है जो हमको अपोज करता है, कोई और बाहर अपोज नहीं करता है. जब तक लोग ये कहें कि हम क्या करें, हम तो साधना करना चाहते हैं लेकिन हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, ये समस्या है, मतलब आप अभी तैयार ही नहीं हो करने के लिए. नन ऑफ दीज इज ए फैक्टर. आत्मनेव आत्मनो बंधु आत्मनेव रिपुर आत्मना, कोई नहीं है आपका शत्रु बाहर. अब देखिए इसको कई तरह से, मान लो कोई बाहर है आपके जीवन में जो बड़ा झगड़ा करता है, ये कॉमन होती है, बड़ा झगड़ालू है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं. एक तो अरे क्या घर में ऐसा माहौल रहता है कि हम बैठ करके ध्यान नहीं कर सकते, कॉमनली यही देखते हैं ना. दूसरा पक्ष देखिए, साधना में कहा गया है कि भगवान सबके अंदर है, क्या मैं इसमें भगवान देख सकता हूं? आप देखिए जिस दिन आप उसमें भगवान देख लेंगे आपको बाकी दुनिया में भगवान देखने की जरूरत नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे. जिस दिन आप उस झगड़े के पीछे प्रेम देख लेंगे, उस घृणा के पीछे प्रेम देख लेंगे, उस क्रुएल्टी के पीछे प्रेम देख लेंगे, तो आपको फिर विश्व प्रेम अपने आप, वो यही ऑकल्ट अरेंजमेंट है कि आप उस भाग को केवल कर लीजिए, पूरे दुनिया में जाके सबके अंदर आपको मैं प्रेम ढूंढूंगा, भगवान ढूंढूंगा, इसकी आवश्यकता नहीं है. उस पार्ट को कि आप उस झगड़े से क्रोधित हो रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में एक ही बाधा है, भगवान या तो ये चली जाए या मैं चला जाऊं, यही प्रॉब्लम है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है. अगर हम ये देखें कि इसके अंदर भी भगवान है, तो आप देखिए क्या होगा. धीरे धीरे आपका वो जो भाग है ना जो रिएक्ट करता है वो करुणा में बदलेगा, फिर वो प्रेम में बदलेगा, फिर वो व्यक्ति बदलेगा. फिर आप देखोगे कि इसके बाद हर किसी के अंदर आपको प्रेम, क्योंकि वो अल्टीमेट चैलेंज आपने कॉन्कर कर लिया. तो ये हमारा अरेंजमेंट है, ऑकल्ट अरेंजमेंट जीवन का, जिसका संकेत इसमें है. और यही अंतर होता है जीव कोटि और ईश्वर कोटि के व्यक्ति में. जो मार्ग्ड होते हैं ना साधना के लिए, देव कोटि के व्यक्ति, वो हर घटना को एक अलग ढंग से वो देखते हैं. और जो दूसरे होते हैं वो बेस्ट में भी वर्स्ट को ढूंढ लेते हैं. तो ये इसी को रिलेटेड और भी हैं, लेकिन अब हम लोग और मनुष्य का काम ही एक पोयम है, मैन द मीडिएटर. ओके, उसको थोड़ा सा, मनुष्य का काम ही है वो ब्रिज बनना. किसके? जहां उसके पांव धसे हुए हैं इनकॉन्शियंट में, और जहां उसका शीश उठता हुआ जा रहा है वो है सुपर कॉन्शियंट. उसका ब्रिज बनना यही उसका काम है. माँ कहती है यही उसका मुख्य काम है, टू बिकम द ब्रिज. और हम भूल जाते हैं, हम इस परेशान होते हैं कि हमारे पांव धसे हुए हैं. आप उतारिए, उसी भूमि पर खड़े खड़े आप सत्य को उतार सकते हैं. तो दिस इज द चैलेंज, मैन द मीडिएटर. इसमें बस हम लोग अंतिम की 6 पंक्तियां पढ़ेंगे. मैन मीडिएट्स बिटवीन, अब तक जो क्रिएशन आई है मनुष्य तक और इसके आगे जो जाना है, ये मनुष्य का मेन कार्य है. अब तक जो क्रिएशन आई है, पशु प्लांट इत्यादि, इसमें पूछा नहीं गया, किसी बंदर से पूछा नहीं गया कि मनुष्य बनोगे. प्रकृति उसको ठोक पीट के बना देती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है. जिराफ से पूछा नहीं जाता, कीट पतंगों से पूछा नहीं जाता, वो अपना अनकॉन्शियस हो रहा है. मनुष्य के अंदर एक सो कॉल्ड फ्री चॉइस दी गई है. भगवान पूछते हैं, इज द हार्ट फायर्स रेडी, चलोगे मेरे साथ? अब ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि अगर वो पशु के प्रोसेस से ले जाएंगे, ले जा सकते हैं, प्रकृति विल टेक. अल्टीमेटली इवोल्यूशनरी एनर्जी बहुत पावरफुल है, वो स्वयं भगवान है, तो वो ले जा सकते हैं. लेकिन वो बहुत लंबी और बड़ी पेनफुल प्रोसेस होगी. आप किसी भी पशु का इवोल्यूशन देखिए, डायनासोर से जो नेक्स्ट स्टेप है, कितने मिलियन ईयर्स स्ट्रगलिंग होती है. तो अगर हम कंसेंट देते हैं तो छलांग लेते हैं, और कंसेंट नहीं देते हैं तो वो मिलियन ईयर्स वाली प्रोसेस है, कंसेंट देते हैं तो कुछ 100 साल वाली प्रोसेस है. ये इस कारण से नेचर ने मनुष्य के अंदर ऐसा कार्यक्रम किया. ये नहीं कि भगवान डिपेंड कर रहे हैं कि मनुष्य हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, लेकिन अगर हम हाँ बोलेंगे तो हमारे लिए वो सरल सहज बन जाएगा. तो ये मनुष्य की यूनिक बात है. मैन द मीडिएटर, ए डम्ब इनकॉन्शियंट ड्रूव लाइफ स्टम्बलिंग मेज, ए नाइट ऑफ ऑल थिंग्स पैक्ड एंड इनफिनिट. It made our consciousness a torch that plays between the abyss and the supernal light. अंधकार से प्रारंभ होती यात्रा, और उसने मेज बनाई हुई है. आप ये ऐसे नहीं कर सकते कि एकदम निकले साधना के लिए और एक साल में आपने सब रियलाइज कर लिया, ये पॉसिबल नहीं है. भगवान हमको धीमी आंच पर पकाते हैं, टेस्टी लगनी चाहिए ना रोटी. ऐसे नहीं कि बस डाल दिया भट्टी में और निकल के आ गया. इट टेक्स टाइम, क्योंकि हर चीज अच्छी बननी चाहिए, एक एक पार्ट सुंदर होना चाहिए, पर्टिकुलरली इन दिस योग. तो इनकॉन्शियंट आपको नहीं जाने देगा, वो कहेगा रुको रुको रुको. एडवर्स फोर्सेस का काम ही ये है, वो आपको बताती रहेंगी, नहीं नहीं एक मिनट, ये वाला दाग नहीं ठीक हुआ. फिर आप कह रहे हैं अच्छा चलो साहब, अब मैं लग रहा हूँ ना साधु बच्चा जा रहे हैं. अरे रुको, पीछे तो तुमने देखे नहीं है, पूरी की पूरी तुम्हारी कमीज काली है, बहुत धूल मिट्टी है, तुम तो आगे ही साफ करते रहे. ऐसा भी है क्या? अब आप शर्ट खोलिए. तो माँ कहती है ऐसे हो गई नहीं, आप शर्ट बदल दीजिए. शी सेज रिवर्सल, चेंज द कॉन्शियसनेस. आप एक एक धाग नहीं धो सकते हो, फट जाएगा वो कपड़ा. चेंज द कॉन्शियसनेस, ये उपाय बताती है माँ, कि डोंट वॉश वन बाय वन, चेंज द चादर. दैट्स हाउ मदर एक्सप्लेन्स. आवर माइंड वॉज फ्रेम्ड ए लेंस ऑफ सेगमेंट साइट. माइंड क्या देख पाता है? एक हिस्से को, बाकी नहीं देख पाता. और वो सब कुछ जज करता है केवल उसके आधार पर कि ऐसा क्यों हुआ. और भगवान तक को जज कर बैठता है इसके साथ ऐसा क्यों हुआ. क्यों? क्योंकि वो आप एक पार्ट को देख रहे हैं और बहुत ही बाहरी पार्ट को. भगवान के पास सारा लेखा जोखा है. अगर वो दिखाने लगेंगे तो हम बहुत जल्दी कहेंगे अच्छा ओके ओके आई हैव अंडरस्टूड, बिकॉज वी वॉन्ट लाइक टू सी. इसीलिए कहा गया है हैव फेथ, हैव ट्रस्ट, सरेंडर. वो सत्य की जो पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी है उनके पास है. तो एंड रीजन ए स्मॉल हार्ड थियोडोलाइट मेजरिंग अनरियली द मेजरलेस वेज. किसके मेजरलेस वेज हैं? स्पिरिट के. वो मेजर करती है. हम लोग कई बार बोलते हैं भगवान ने तुम्हारे जीवन में ऐसा किया जिससे तुम ये सीखो. नहीं भैया, एक किसी को तो स्कूल मास्टर मत रहने दो. भगवान ने तुम्हें ऐसी कठोर वो दी, सजा दी, ताकि तुम्हें सीख सको. अब बोलो, आजकल टीचर भी ऐसा करें तो बच्चे कह देंगे कि धारा ये लागू हो जाएगी आपके ऊपर. भगवान को हम बना रहे कि वो सजा दे रहे हैं क्या, ताकि तुम ये सीखो. ऐसे नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम है भगवान का. वो बड़े प्यार से ले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कैसे कैसे सीखते चले जा रहे हैं. लर्निंग है. आप देखिए, इनबिल्ट है लाइफ के अंदर, इजंट इट? हो गए होंगे ना 50 के ऊपर तो कुछ लोग होंगे, शायद कुछ 60 के ऊपर हों. आप देखिए कैसे सीखे आपने, इसे प्रश्न करके सीखे ना, कुछ तो सीखे. हम ये तो कह सकते ना, थोड़ा बहुत सीखे, थोड़ी विजडम आई. वही जो इतना क्रोध आता था, इनटॉलरेंट होते थे, जब वही दादाजी बन जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने बेटे को कहते, बेटा इतना गुस्सा मत कर, बच्चा है ना, ग्रो हो जाएगा, तू भी ऐसे ही था. तो बच्चा कहेगा, पर पापा आपने तो मुझे ये सब नहीं ट्रीट किया, आप तो बड़े गुस्सा होते थे मेरे ऊपर. हाँ बेटा, आप मैं सीख गया हूं ना, उम्र हो गई. तो ये दिस, अब ये लर्निंग कैसे होती है? क्योंकि हमारे अंदर एक अंतर्यामी बैठे हैं. वो ऐसे नहीं करते सीख, ये मेंटल वे लेसन सीखा, ऐसे नहीं. वो लाइफ की लर्निंग है. वो धीरे धीरे कोई चीजें जो आत्मसात करती बढ़ती. जब आप स्माइल करने लगो हर चीज के ऊपर, हर बात में, हर अवस्था में, मतलब अब आप मैच्योर हो गए. मेरा मैच्योरिटी का साइन यही है. ये नहीं कि कितना उनको प्रैक्टिकल, अगर आप स्माइल कर सकते हो हर अवस्था में, मतलब आपको वो ज्ञान आ गया जो ज्ञान आपको शांत और प्रफुल्लित कर दे हर सिचुएशन में. ये नहीं कि आप जबरदस्ती स्माइल करने लगो, वाइफ गुस्सा हो रही और आप स्माइल करने लगो, हाँ मैं समझ रहा हूं, तो गुस्सा आप भड़का दोगे. तो ये भी सीखना है कि कहां स्माइल नहीं करना है, पर मन ही मन स्माइल कर रहे हो कि ठीक है, शांत हो जाएगी. प्यार है इसके पीछे, होता है ना, शुरू में नहीं समझ आता है. और ये जब अगर आप पेशेंट हो ना, तब समझ आता है. आजकल के बच्चे ये बात नहीं जानते हैं, क्योंकि कोई उनको सिखाता नहीं है. वो फट से काट डालो, तोड़ डालो. दे डोंट अंडरस्टैंड. ये आपको दूसरे में भी फेस करना पड़ेगा. यू हैव टू फेस इट अगेन. हम लोग ऐसे करते करते करते, ये तो ऐसे ही हैं, इनका क्या है ना, जब थोड़ी उम्र हो जाती है हस्बैंड वाइफ की तो ऐसे ही बोलते ना, अरे ये तो ऐसे ही हैं इनकी बात. और यंग एज में लगता है, अरे ये कैसे हैं. सही बोल रहा हूं ना? ये इनबिल्ट है. ये ज्ञान आता है, इससे हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं. येट इज द डार्क इनकॉन्शियंट वेंस केम ऑल द सेल्फ सेम पावर दैट शाइन्स ऑन हाई अनवन. आवर नाइट शेल बी ए स्काई परप्यूरियल. आवर टॉर्च ट्रांसम्यूट टू ए वास्ट गॉडहेड सन. टॉर्च क्या है? माइंड की. थोड़ा एक कदम नहीं दिख रहा है, वो क्या बन जाएगा? सूर्य में. परप्यूरियल क्या होता है? पर्पल हमेशा रॉयल वर्ड. अभी जो है अंधकार जो है वो स्काई परप्यूरियल, एक रॉयली रॉयल ब्लू का जो स्काई है, मतलब रॉयल्टी का लक्षण है, राजा का लक्षण है. वो ही अपने राज्यम समृद्धम को प्राप्त कर देगा. रूटेड इन मायर हेवन वर्ड मैंस नेचर ग्रोज हिज सोल द डिम बड ऑफ गॉड्स फ्लेमिंग रोज. ये हमारी नियति है. हमारे पांव धसे हैं कीचड़ में, लेकिन कमल खिलेगा. कहाँ खिलेगा? कीचड़ में. ये दोनों, ये लगता है विरोधात्मक, लेकिन दिस द प्रोसेस. किसी का खिल गया उसका भी होने वाला है. सबका खिलेगा कमल. ओके सो अब लेकिन जो देव कोटि के जीव हैं उनका एक छोटा सा बड़ी सुंदर श्री अरविंद की एक सीरीज ऑफ पोएम्स हैं, द मेडिटेशंस ऑफ मांडव्य. मांडव्य ऋषि की कहानी सुनी है ना हम लोगों ने? आई थिंक प्राय सब ने सुनी है. अच्छा तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. श्री अरविंद ने द मेडिटेशंस ऑफ मांडव्य, तो मांडव्य और श्री अरविंद में जो कॉमन चीज है कि मांडव्य भी विधान को बदलना चाहते हैं. तो दो प्रकार के आप देखें कि भारत में धाराएं निकली. एक जो विधान को स्वीकार करती हैं, विधि का विधान है, तुम्हारे कर्म है, तुम्हारा जो भी है इससे निकल जाओ. एक धारा ये निकली, कर्म है, सुख दुख है, इसको झेल लो, निकल जाओ. एक है जो इसको चैलेंज करती है. सावित्री क्या करती हैं? चैलेंज करती हैं. वो ये नहीं कहती क्या करूं, अब जो लिखा है मेरे भाग्य में लिखा. श्री राम चैलेंज करते हैं. वो ये नहीं कहते हैं अच्छा ले गया रावण, ऐसे ही कुछ होगा, भगवान का विधान ऐसे ही कुछ होगा. जंगल में तो मैं हूं ही, पिता ने मुझे निकाल दिया, राज्य से निष्कासित हूं, आई भी चली गई, पता करूं पास में कौन सा सन्यास का आश्रम है, वहां जाके मैं भी स्वामी रामानंद लिख लूं. ऐसा नहीं करते हैं, भाग्य का चैलेंज स्वीकार करते हैं, भाग्य बदल ले. श्री कृष्ण भी यही करते हैं. आप देखिए ये इवोल्यूशनरी धारा है. वो अर्जुन को नहीं कहते कि देख अर्जुन अब फेंका था तूने ढाई ढाई तेरे भैया ने, उनकी मति भ्रम जो भी हुई हार गए, मान ले अब क्या करूं, अब तेरे तो तू याचना ही कर सकता था, याचना की, दुर्योधन मना कर रहा है. अच्छी बात है संन्यास ग्रहण कर ले, तेरे भाग्य में संन्यास ही लिखा है. नहीं कहते हैं, भाग्य का चैलेंज लेते हैं. और वैसी परंपरा में हम देखते हैं कि मांडव ऋषि आते हैं. और भी कई हैं, तो उनके जीवन में एक घटना होती है कि एक राजभवन से चोर गहने चोरी करके भाग रहा होता है, पीछे पीछे सैनिक भाग रहे होते हैं, तो वो देखते हैं ऋषि कुटिया के बाहर ध्यानमग्न है, वहीं पर ये पकड़ लेंगे. वो छिपा देता है कुटिया के अंदर, अब आगे भाग जाता है, निकल जाता है कि बाद में आके ले लूंगा, ये ऋषि मुनि तो दे देंगे मुझे आराम से. सैनिक पीछे आते हैं तो देखते हैं कि कुटिया के अंदर, उनको डाउट होता है, देखते हैं कि यहाँ तो गहने हैं, तो मांडव ऋषि को उठा के ले जाते हैं कि जहां मिला वही चोर. तो जब ले जाते हैं तो राजा को कहते हैं कि हमने चोर को पकड़ लिया जो गहने लेके गया था. राजा भोग विलास के मूड में था, उसने कहा डाल दो सूली के ऊपर. तो पनिशमेंट क्या था? बेड ऑफ नेल्स पे रात को डाल दिया जाता था. अब सोचिए पूरी रात को अगर कांटों के बिस्तर पे, अनलेस वो कोई सन्यासी है, वो तो नहीं बच सकता, उसके चांस बहुत कम है बचने के, या इतना क्षत विक्षत हो जाएगा. तो डाल दिया. सुबह में जब वो उसके कि भाई ये मृत होगा या लहू लुहान होगा लेने गए, देखा वो तो आराम से बैठे हुए शांत मेडिटेशन में. घबरा गई ये, भागे भागे राजा के पास. राजा राजा क्या हुआ? वहां डाल दिया. अच्छा तो क्या हुआ? नहीं वो तो जिंदा है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसको. राजा ये देखने की कौन है? मांडव ऋषि पहचाना, कहा क्षमा करिए हमसे भूल हो गई. तो मांडव ऋषि कहते हैं तुम हो कौन कि तुमसे भूल हो गई? क्या भूल हो गई तुमसे? नहीं मैं ही वो राजा हूं जो जिसने आपको पनिशमेंट दिया. कहता अच्छा तुम्हारी इतनी भी साथ कि मुझे पनिशमेंट दे डालो? तुम हो कौन? रास्ते से हटो मेरे. कहते आपने मुझे क्षमा किया? कहा क्षमा मैं किसको करूं, तुम दोषी हो ही नहीं. तो कहा फिर मैं तो विधाता से प्रश्न करने जा रहा हूं कि मुझे ये क्यों हुआ. कह रहे तुम कौन हो? अरे कह रहे बीच में आ गए, तुम तो इंस्ट्रूमेंट बने, चले गए सीधा पहुंच गए। मिस्टर चित्रगुप्त प्लीज कम आउट। आए मांडव ऋषि पहुंचे। ये क्या तरीका है, ये कहां आपके खाते में क्या लिखा है, दिखाइए मुझे आप। तो कहते हैं कि भाई लिखा तो है कि आपने इतने जन्मों पहले जब 5 साल के बच्चे थे तो एक तितली को कील चुबा दी थी। कहते ये तुम्हारा कोई न्याय है, एक 5 साल के बच्चे ने 5 जन्म पहले एक तितली को कील चुबाई, तो जब वो सब चेंज हो गया, ऋषित्व को प्राप्त कर चुका है, तो तुम उसको ऐसे पनिशमेंट दे रहे हो, इसको तुम न्याय कहते हो? फिर वो अपने तपोबल से कहते हैं मैं अपने तपोबल से इस विधान को बदलता हूं। वेरी पावरफुल स्टोरी। ये कैसा विधान है ये, इसको? पर आप देखिए एक प्रकार के लोग हैं जो मानते रहते हैं, हाँ ठीक है हमने कुछ किए होंगे बुरे कर्म, अब तो भैया अच्छे हो गए सुधर गए, अगर देना था तो तब देना था। आपने कभी चोरी की लेकिन अब तो आप बड़े दाता बन गए, बड़े ऑनेस्ट, इनकम टैक्स सब भर रहे हो, तो ये अब आपके जीवन में ही आ गया, अजीब सा नहीं लगता है भाई? तब आप पकड़ लेते चलो समझ आए कि उसी जन्म में एक बल्ब जलता कि तुमने ऐसा किया, हे मनुष्य पापी तुझे मैं सजा दे रहा हूं, दांग एक कोई बिजली चमकती और आपको कुछ हो जाता, तो आप स्वीकार, ये क्या विधान है? तो ये मांडव ऋषि उनमें से हैं जो इवोल्यूशनरी उसमें विश्वास करते थे। ऐसे और भी ऐसे योगी हुए विश्वामित्र के साथ भी। तो सम ऑफ दीज ग्रेट योगीज दे ट्राई टू चेंज द वेज ऑफ डेस्टिनी। और क्यों? क्योंकि देखिए ये चूंकि इसकी बात हो रही है, डेस्टिनी के बारे में 2 प्रकार की मान्यताएं हैं। एक तो सब भगवान करते हैं, जो करते हैं अच्छा करते हैं, यही सुनते हैं ना। माता जी से किसी ने पूछा संसार में जो होता है भगवान करते हैं सब अच्छा करते हैं, कहते हैं ये मान के चलोगे ना कि भगवान जो दुनिया में हो रहा है भगवान कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद तुम उनको एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना दोगे। स्वाभाविक है जो कुछ हो रहा है। कहते हैं अगर तुम ये मान के चलोगे सब भगवान कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो अच्छे ही कर रहे हैं, तो तुम होस्टाइल फोर्सेस के ट्रैप में चले जाओगे। यहां तक कह दिया उन्होंने। तो फिर माँ बताती हैं कि भगवान का जो ओरिजिनल इम्पल्शन होता है कभी किसी को दर्द दुख देने के लिए नहीं होता है। माँ कहती माई चाइल्ड आई डोंट वॉन्ट टू टेक अवे योर हैप्पीनेस, मैं तो तुम सबको खुशी खुशी ले जाना चाहती हूँ, लेकिन भगवान के संकल्प हमारे बीच में एक्सीक्यूशन में। बहुत सारी शक्तियां हैं जो कार्य करती हैं। वो कैसे कार्य करती हैं? मान लीजिए किसी राजा ने बुला के कहा वो देखो वो जो कर्मचारी है ना मैं आ रहा था देखा ठीक से काम नहीं करता, जरा उसको समझा देना। अब इसने दूसरे को बोला नेक्स्ट इंचार्ज, अरे जरा उसको समझा दियो। उसने कहा अरे उसको अच्छे से डांट लगाना। चौथे को बोला कहा ये तुम्हारे कर्मचारी हैं जरा थप्पड़ मार के सिखाओ। पांचवें तक पहुंचा कहा तू जॉब छोड़ दे, राजा तुझसे बड़ा नाराज है क्योंकि तू काम ठीक से नहीं कर रहा। देखिए राजा का और यहां पर, तो ये जो न्याय है यम के विधान, 2 प्रकार के जो लॉज होते हैं, एक सूर्य का सत्य धर्माय दृष्टये और दूसरा यम का, उसी की छाया है यम। तो यम का विधान क्या है? ये यम रिस्ट्रेनर, यम ये नहीं देखता है कि आप अच्छे हो बुरे हो, फ्लैट आपका टाइम आ गया मेरे खाते में लिखा है बस, कोई रोना धोना नहीं, कुछ देर रहोगे ठीक हो जाओगे, वो कुछ ये सब। इसलिए कहते हैं जब आप भगवान की शरण में जाते हो तो क्या होता है, एक दूसरा विधान एक्टिवेट हो जाता है आपके सिस्टम में जो इसको इरेज करने लगता है, चेंज करने लगता। पर वो सच्ची शरण वो ऐसे नहीं है कि भाई हम मानने लगे, यू हैव टू रियली बी शरणागति और वो चेंज प्रारंभ हो जाता है। एंड इट्स ए प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस। तो मेडिटेशंस ऑफ मांडव्य, अब देखिए हम सब कहते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से छोड़ो मनुष्यों से प्रेम करते हैं। प्रेम क्या होता है, किसको बोलते हैं प्रेम? शेरविन सिखा रहे हम लोगों को प्रेम सिखा रहे हैं, व्हाट इज लव। ओ जॉय ऑफ ये वन द मेडिटेशन ऑफ मांडव्य वन. ओ जॉय ऑफ गेनिंग ऑल द सोल्स डिजायर. जो कुछ आपके चाहते थे वो मिल गया. इससे बड़ा भी कोई खुशी हो सकती है? इससे बड़ी. ओ स्ट्रेंजर जॉय ऑफ द डिफीट एंड लॉस. माता जी इसको बताती हैं. बुद्धिज्म में तो इसकी प्रैक्टिस की जाती है. कहती हैं वो जब एक थिएटर में देखने गई प्रोग्राम, वो उनका अपना अनुभव है लेकिन वो ऐसे बताती नहीं है. उनके दो अनुभव हैं इससे मिलते जुलते. तो बैठी हैं और वो नोटिस करती हैं, क्योंकि माँ लंबी थी ना, जो पीछे बैठे थे वो ठीक से देख नहीं पा रहे थे. तो माँ कहती हैं वो थोड़ा सा ऐसे हो गई, सरक गई. अब वो नहीं देख पा रही थी लेकिन जो पीछे था वो देख पा रहा था. माँ कहती उस दिन मैंने इतना जॉय, वो अपना नहीं, वो कहती उस महिला ने, बार बार वो कहती उस महिला ने इतना जॉय एक्सपीरियंस किया. टिकट देके गई हैं? नहीं देख रही हैं, किसी और को देखने दिया. एक और है, उन्हीं की कहानी है. वो भी वो कहती नहीं है कि मेरी कहानी है, लेकिन ये सर्वविदित है कि ये उनकी कहानी है. एक प्ले है उनका टुवर्ड द फ्यूचर. तो उसमें विवाहित हैं, उनका जो हस्बैंड है वो पेंटर है, जो वस्तुतः भी सही था, ये भी कलाकृति करती हैं. तो वो टुवर्ड द फ्यूचर, वो उसका नाम दिया है माने टुवर्ड द फ्यूचर, कि हमेशा हमको भविष्य की ओर जाना चाहिए. पास्ट को हम ग्रज लेके बैठे रहते ना. तो वो जब एक दिन उनको ज्ञात होता है कि उनका जो पेंटर पति है वो पास में एक महिला है जो क्लियर वॉइंट है, जो थोड़ी जान लेती है कि कुछ उसके अंदर कुछ क्षमताएं हैं, कैपेसिटीज हैं, और दोनों का प्रेम हो गया है. तो एक दिन जब ये जो उनकी वाइफ है, जो माँ का रोल है, वो जब आती हैं घर तो देखती हैं दोनों थोड़े मतलब अजीब सी इंटीमेट पोजीशन में हैं, और देखते ही वो थोड़ा अलग होने की चेष्टा करते हैं. तो माँ जब देखती हैं, अब देखिए नॉर्मल प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी, वो एक अलग बात है. माँ देखती हैं, मुस्कुराती हैं, कहती नहीं मैं समझ रही हूँ, एक्चुअली जो हो रहा है ना वो उचित हो रहा है, क्योंकि ये सच है कि तुम्हारे लिए यही सबसे सही है. मतलब वो जो महिला है, और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देती हैं, फिर कहती हैं बस इतना ध्यान रखना कि एकदम पशु जैसा जीवन मत जीना. तो अब ये ना कि उनको कहीं ये लगे कि हमने इसको दुखी किया, मुक्त कर रही हैं उससे भी. कहती मेरी चिंता मत करो, मैं जानती हूं कि मुझे ये फ्रेमवर्क में कभी सेटिस्फैक्शन जॉय नहीं मिलता. मेरा लक्ष्य तो भगवान है, तो मुझे भी भगवान ने आज मुक्त कर दिया, और मुझे पता है कि कोई भी मानव प्रेम मेरी प्यास को तो नहीं बुझा सकता है, तो मैं चली उधर. रियल लाइफ स्टोरी है माँ की. तो अब देखिए कि ये वही घटना, उसको देखने का तरीका देखिए. तो वहां पर क्या है, लॉस है, डिफीट है. डिफीट किस सेंस में, कि जो सर्वगुण संपन्न उनकी पत्नी है उसकी जगह वो किसी और के तरफ चला गया. तो देखा जाए कई लड़कियों को बहुत बुरा लगता है, दे फील रिजेक्टेड, कि मुझे इसने कम समझा. लेकिन वो इसको एक ऐसे नहीं ले रही हैं, वो जॉयसली ले रही हैं कि मैं मुक्त हुई, अब मैं अपने रास्ते जा रही हूं. ओ हार्ट दैट यर्न्स टू अपलिफ्ट द वर्ल्ड. एक हृदय ऐसा है जो सारे संसार को ऊपर उठाना चाहता है. ओ फियर्सर हार्ट दैट बेंडेस्ट ओवर इट्स पेन. आप ऊपर उठाना चाहते हैं लेकिन दुख, उसको कौन, पीड़ा को कौन संभालेगा? तो पीड़ा को भी वो हटाना चाहता है. एंड ड्रिंकेस द सेवर. केवल वो पीड़ा को नहीं, वो पीड़ा को आत्मसात कर रहा है. नीलकंठ शिवत्व, यही तो शिवत्व है, कि वो उस दूसरों की पीड़ा को अपने अंदर ले रहा है, सोख रहा है. एक है जो ऊपर उठा रहा है कि भाई हम यहां, ये देखिए दो प्रकार के गुरु होते हैं. एक होते जो वहां बैठे रहते हैं और कहते हैं हमने मेडिटेशन सिखा दिया, कर्मों के हिसाब से तुम्हारे लाइफ में अच्छा बुरा होगा, आई कांट हेल्प इट, भोग लो, बाकी तुम धीरे धीरे ऊपर उठो. एक प्रकार के गुरु ये होते हैं. दूसरे प्रकार के कौन से होते हैं, वो नीचे उतरते हैं और उसकी पीड़ा को अपने अंदर लेते हैं. श्री रामकृष्ण परमहंस इज दी एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड टाइप, ऑफ कोर्स मदर एंड श्योरबिंदो, वो तो हमें पता ही है सारा. उनका जो उन्होंने सब शिष्यों के अंधकार को अपने अंदर लिया. श्री रामकृष्ण परमहंस को जो थ्रोट का कैंसर हुआ था, जब पूछा 58 की आयु, सोचिए, तो उन्होंने कहा था. और शेरविंद से एक किसी प्रश्न किया कि यंग एज में, तो वो कहते हैं तुमने पढ़ा नहीं है उन्होंने क्या लिखा है, कि वो जो डिसाइपल्स हैं उनके पापों को उन्होंने अपने अंदर लिया था. तो एक होते हैं जो ऊपर आपको प्रेरित करते हैं, भाई मैं यहां पर हूं, नियम के परे हूं, तुम भी आ जाओ, रास्ता बता रहा हूं, थोड़ी बहुत हेल्प होगी. लेकिन दूसरे जो नीचे उतरते हैं, माइंड को कहते हैं हीरोइक सोल्स. दो प्रकार की सोल्स हैं, एक जो मुक्त अवस्था में आके दूसरों को मुक्ति की ओर ले जाती हैं, और दूसरी जो हीरोइक सोल्स हैं जो फिर से अंधकार में आती हैं और वहां पे कार्य करती हैं. एंड ड्रिंक इज द सेवर, आई विल लव दी, ओ लव. अब यहां लव विद ए कैपिटल एल, मैं प्रेम का पुजारी हूं. प्रेम सर्वत्र विद्यमान है, वो प्रेम के देवता या जो भी कहें आप. ओ लव, आई विल लव दी ओ लव, नेकेड और वेल्ड और ड्रेडफुली डिस्गाइज्ड. ड्रेडफुली डिस्गाइज्ड प्रेम कौन सा है? महाकाली का. कैसा प्रेम है? आके वो ये नहीं, मां क्या खाएगा, बच्चे क्या लेगा, वो तो आके कहती है खून देगा, शीश देगा. अगर मान गए आप तो आपका एक झटके में कल्याण, एक साथ ईगो का पूरा वो, तभी तो वो स्विफ्टली ले जाती हैं. वो माँ है, डिवाइन लव की इंटेंसिटी है. और दूसरा महालक्ष्मी का प्रेम है, आपकी वीकनेसेस को बेयर करती हैं, टेंडर टच देती हैं धीरे धीरे. तीसरा महासरस्वती का प्रेम है, पेशेंटली आपको एक ही चीज सिखा रही हैं. चौथा महेश्वरी का प्रेम है, करुणा प्रकाश, देखो इस तरह. पर महाकाली का प्रेम वो ये सब नहीं करती हैं, वो सीधा कहती हैं शीश रक्त. आप यस और नो, ऑप्शन नहीं है ज्यादा. एंड देयर शी गोज. तो वहां कह रहे हैं ओ लव, नेकेड और वेल्ड और ड्रेडफुली डिस्गाइज्ड, नॉट ओनली व्हेन थाउ फ्लैटरेस्ट माई हार्ट बट व्हेन थाउ टेरेस्ट इट. क्या प्रेम है ये, सबको पसंद है ना, आसपास वो प्रशंसक रहे. भगवान का प्लान बड़ा अद्भुत है, कोई ना कोई ऐसा होगा जो निंदक नियरे राखिए करेगा, और उसको आप नहीं हटा सकते. बड़ी अद्भुत बात है. तो वहां पे उसको कहते हैं लोग रियलिटी चेक, नॉट दैट इट्स ए रियलिटी चेक, पर कैन यू स्टिल लव. इसीलिए कहते हैं कि जो प्रेम बहुत लंबा इस सब चीजों के बीच से गुजर के जाता है ना, वो अद्भुत होता है, उसका फ्लेवर इज समथिंग एल्स, क्योंकि उसने सारे अप डाउन सब कुछ देखे, तो उसका जो फ्लेवर होता है ना, और वो किसी सीमा से डिपेंडेंट नहीं होता, देश काल की सीमा के परे चला जाता है. तो उस लव की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली व्हेन दाउ फ्लैटरेस्ट माई हार्ट बट व्हेन दाउ टेरेस्ट इट, दाई स्वीट पिटी आई लव एंड मदर्स केयर फॉर क्रीचर्स फॉर द जॉयज आई लव दी दैट द लाइव्स ऑफ थिंग्स पजेस. अब ये स्पष्ट है, ये ओ लव की बात हो रही है. यूनिवर्सल मदर वो कैसे कहती है, देखते हैं सबका संभार कर रही हैं, देखभाल कर रही हैं, कहते हैं आई लव यू फॉर दैट, जो आप नाना प्रकार के जॉय हर लेवल पर लिमिट के अंदर प्रोवाइड करती हैं. लेकिन एंड लव दी फॉर द टॉर्मेंट ऑफ आर पेन्स. हम क्या करते हैं ना, भगवान को आधा अधूरा चाहते हैं. एक जगह शेरविंद कहते हैं ओ मिस फॉर्चून ब्लेसेड आर दाओ फॉर दाओ हैज शोन मी द फेस ऑफ माई बिलवेड. अच्छा हुआ, दुर्भाग्य आया, क्योंकि मैंने अपने चिर प्रेमी का चेहरा उसके थ्रू देख लिया. एक जगह और कहते हैं कि जब सर फिलिप सिडनी ने देखा एक फांसी पर कोई जा रहा था, तो कहते हैं भगवान की कृपा है कि मैं नहीं हूं. तो शेरविंद कहते हैं ज्यादा करेक्ट होता यदि वो स्वयं भी जा रहे होते फांसी पर और कहते भगवान की कृपा है कि मैं फांसी पर जा रहा हूं। एक जगह और लिखते हैं कि प्रोविडेंस केवल वो नहीं है, भगवान की कृपा। जब एक नाव डूब गई, सब डूब गए, मैं बच गया, आह बड़ी कृपा हो गई। प्रोविडेंस वो भी है कि सब बच गए और मैं डूब गया। देखिए उसमें जो प्यार करे वो प्रेम है, वरना तो भक्ति सब करते हैं। भक्ति है ढोल मंजीरा पीट लो, थोड़ी देर गाना बजाना कर लो, लेकिन इसको कहते हैं भक्ति। ये साइकिक भक्ति है, इट्स रियली साइकिक भक्ति, अहेतुकी, अनकंडीशनल। एंड लव दी फॉर द टॉर्मेंट ऑफ हर पेन्स, नॉर क्राई एज सम अगेंस्ट दाई विल, नॉट से दाउ आर्ट नॉट। भक्ति करी, पूजा पाठ की, कुछ हो गया, अरे ये सब बेकार की बात है, कोई भगवान भगवान नहीं है। जब तक मिल रहा था मेवा तब तक भगवान बड़े अच्छे थे, जब तक मिली जलेबी तब तक भगवान तुम अद्भुत हो, और जिस दिन मिला करेला ये कैसे हो, ये कोई चीज है देने की खाने की। ये तो है, हम सबके यही है ना, इतना ही संबंध होता है भगवान के साथ। लेकिन कैसी होनी चाहिए भक्ति, साइकिक भक्ति क्या होती है? इजी इज द लव दैट लास्ट ओनली विथ फेवर्स इन द शॉप मैन्स हार्ट। मुझे क्या दे रहे हो, दे रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने ये दे दिया वो दे दिया, इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, उतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, शॉप मैन्स हार्ट, मोल तोल भाव। इजी इज द लव that lasts only with favors in the shopman heart, who tortured takes and gives the love, who tortured takes and gives the kiss he loves. ये भी देखिए perfection, देखिए श्री अरविंद की वाणी का, who tortured, ये नहीं केवल कह रहे हैं gives the kiss, टेक्स। अब जब गुस्सा होते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, स्वीकार कर रहा है और दे भी रहा है, प्रेम तो उसको आता है। पढ़ने के बाद लगता है कि आगे से कभी ये कहना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं ये ना ही कहा जाए तो अच्छा है। इसीलिए कहा है हिंदी में किसी ने कि प्यार और व्यापार में यही अंतर है, प्यार तो प्यार होता है, अच्छा बुरा ये सब जहां कैलकुलेशन घुसा वहां व्यापार होता है। देखिए कितनी सुंदर है। एक और हम लोग क्विकली पढ़ लेंगे, छोटी सी है, देन वी विल ब्रेक। तो इसी मेडिटेशन ऑफ मांडव्य में तीसरी जो है वाइल ऑन ए टेरेस, ये श्री अरविंद की ही अपने अनुभव है कि वो कलकत्ता में जब कलकत्ते में जब टेरेस पर हैं तो एक बिच्छू उनको काट लेता है। तो उसके बाद उनकी ये देखिए ये पूरा योग है इसमें। योगी क्या करता है, नॉर्मल व्यक्ति जो घटनाओं के प्रति जो प्रतिक्रिया देगा योगी उससे भिन्न देता है, ये उसका माइंड ट्रेन हो जाता है, बिल्कुल उससे अलग देगा उसके माइंड को उसने। अब राजयोग में तो ये टेक्निक होती है कि कोई आपसे घृणा कर रहा है फिर भी आप प्रेम करो, तो एक टेक्निक है। बुद्धिस्ट में भी ये टेक्निक है, इसको अलग अलग ढंग से कि हेट द सिन बट डू नॉट हेट द सिनर, अलग अलग ढंग से इस चीज को कहा गया है कि आप उसका प्रत्युत्तर क्या दे रहे हो। ये बहुत अच्छी एक चेतना को ट्रेनिंग है और बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर है कि और श्री अरविंद के जीवन में देखिए, जब कोई फकीर उनके ऊपर वो फेंक रहा था पत्थर, लास्ट में कहते व्हाट डेथ फॉर ए फ्यू स्टोन्स, कितने क्षमा उदार सबके। तो ये मार्ग होता है जिससे जाना पड़ता है। साधना ये नहीं होती है कि हम बस चले गए या तो आश्रम या सेंटर थोड़ी देर बैठ गए, आंख मूंद लिया, काम कर लिया, वो सब इम्पॉर्टेंट है, वो तैयारी है। असल चीज है आपके अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या कर रहे हैं वो एक पार्ट है, अंदर में क्या हो रहा है। तो यहां पर वाइल ऑन ए टेरेस हश्ड आई वॉक्ड एट नाइट, रात को मैं टेरेस पे चल रहा था, ही केम एंड स्टंग माई फुट, अब देखिए भगवान आए और उन्होंने मेरे पांव में डंक मारा. ये श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ भी हुआ था जब सांप ने डंक मारा था. ए काली क्या कर रही हो, फिर ध्यान मग्न हो गए. श्री अरविंद के जीवन में एक स्कॉर्पियन बाइट करता है उनको, बिच्छू. ही केम एंड स्टंग माई फुट, माई सोल सरप्राइज्ड रिजॉइस्ड इन लवर्स कॉन्टैक्ट. कि इतना प्यार अचानक आके इस तरह से बिना कुछ बताए मेरा चुंबन ले लिया, वो भी चरणों का. कुछ तो कहा होता तो माई सोल सरप्राइज एट माई लवर्स कॉन्टैक्ट, क्योंकि वो उस अवस्था में है उस समय. अरे मेरे प्रेमी को क्या सूझी, मेरे पांव को उसने चूम लिया और इतनी तीव्रता से काट लिया लगता है प्यार प्यार में. देखिए माई सोल सरप्राइज बट द माइंड. अब माइंड आ गया, थॉट ऑफ ए स्कॉर्पियन एंड वॉज स्नेयर्ड बाई फॉर्म्स. देखना क्या चाहिए भगवान, लेकिन माइंड आता है. माइंड कहता है लेकिन ये तो बिच्छू है. तो स्नेयर ऑफ फॉर्म क्या होता है, अब वो दिव्य को छिपा देता है. ये भगवान नहीं है, ये बिच्छू है. माइंड की तो यही सीमा है, रूप ही उसकी सीमा है, बाहर की दृष्टि यही है उसकी. स्टिल स्टिल माई सोल रिमेंबर्ड इट्स डिलाइट, डिनाइंग माइंड एंड मिड्स द बॉडीज पेन आई लाफ्ड कंटेंटेड. ये देखिए साधना का एक प्रोसेस बता दिया कि एक और आपका माइंड हैबिचुअल कंडीशन रिस्पॉन्स दे रहा है कि बिच्छू है. बिच्छू है तो माइंड के अंदर पेन, पेन आपको होना चाहिए. ये कंडीशन एक्चुअल कंडीशन, इसको आप इवन विदाउट गॉड में विश्वास आप इसको रिवर्स कर सकते हैं. ये वो एक अलग प्रोसेस है. बुद्धिस्ट नहीं मानते भगवान में, पर वो आप आपकी पेन को बेयर करने की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उसी पेन में आपको जॉय फील कर सकते हैं, ये सब भगवान. लेकिन यहां देखिए अंदाज देखिए, भगवान आए उन्होंने स्पर्श किया, थोड़ा लगता है चुटी काट ली भगवान ने ठिठोली करते हुए मुझसे. माइंड ने कहा रे भगवान उगाने नहीं काटी ये चुटी, देख बिच्छू है. तो मुझे दर्द होने लगा, फिर मेरी सोल ने माइंड को हटाया तो परे हट, अज्ञान में रह रहा है. और वापस मैंने अपनी सोल की बात सुनी और एक ओर दर्द था, दूसरी ओर मुझे आनंद महसूस हो रहा था. ये वो अनुभव है ना, तेरी तलवार के नीचे में नच्छियां करके छियां छियां. ये सब रियल एक्सपीरियंसेस है. और ये हो रहा है कि ये नहीं कि पेन नहीं हो रहा है, हो रहा है, वो एक उसमें हो रहा है और दूसरे में अंदर में आपकी सोल रिजॉइस कर रही है. सब कुछ तुम हो, सब कुछ तुम हो, तुम्हारे ही कॉन्टैक्ट है. While on a terrace hushed, I walked at night. He came and stung my foot. My soul surprised, rejoiced in lover's contact. But the mind thought of a scorpion and was snared by forms. Still, still my soul remembered its delight. Denying mind and midst the body's pain, I laughed contented. Okay, we'll stop here.